सज्जाद अलैहिस्सलाम के ज़माने के हालात को दो हिस्सों में बयान करना था। पहला हिस्सा बयान कर दिया गया और इस दूसरे हिस्से में मदीने वापस आने के बाद से लेकर इमाम की शहादत तक के हालात को मुख्तसरन बयान करेंगे। आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की किताब है 250 साला इंसान, इसका हम पहले तारुफ करा चुके हैं। इस किताब में वो ये तहरीर करते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इमामत का आगाज़ बेशुमार मुश्किलात में हुआ था और 61 हिजरी रोज़े आशूरा आप मनसब इमामत पर फायज़ हुए। करबला के वाक़े से पहले भी कत्ल व गारत गरी का सिलसिला जारी तो था, सूरत हाल नहायत ख़राब थी, इसीलिए सईद शहदा ने क़याम किया था। लेकिन करबला के दिलखराश वाक़े ने पूरे आलम इस्लाम को हिला के रख दिया। फ़र्जंदे रसूल का कत्ल और ख़ानदान रिसालत का क़ैद करके शहर ब शहर फिराया जाना और फ़र्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को नेज़े पे बुलंद करना, ऐसा काम था जिसने आलम इस्लाम को गम व अंधों में मुब्तिला कर दिया। अभी वो लोग मौजूद थे जिन्होंने ख़ुद अपनी आँखों से पैगंबर इस्लाम को सईद शहदा के लबों के बोसे लेते देखा था। किसी के गुमान में ना था कि ऐसा हो जाएगा, लिहाजा तमाम दुनिया इस्लाम पर एक अजीब किस्म की दहशत तारी थी। और फिर तवाबीन के वाक़े ने और वाक़े हुर्रा ने भी खौफ और वहशत में इजाफ़ा कर दिया था। इसके साथ ही एक और अहम चीज़ वो ये कि गुज़िश्ता 20 बरसों में दीनी तालीमात से लापरवाही बरतने की वजह से इस्लामी माशरे में की जो फ़िक्री हालत थी, फ़िक्री तौर पे इस्लामी माशरा पहले से बदतर हालत की तरफ जा रहा था, फ़िक्री तौर पर जवाल पसीर हो रहा था। गोया 40 हिजरी के बाद से तकरीबन 20 साल के अरसे में दीन की तालीमात, आयात इलाही की तफसीर और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन इतने महदूद होकर रह गए थे कि अवामुन्नास एतकाद ईमान के लिहाज से बिल्कुल मुफलिस हो चुके थे। जबकि ऐसा नहीं था कि इस्लामी माशरे में उल्मा मुहद्दिसीन क़ारियान क़ुरान नहीं थे, फिर भी लोग बेदीनी और एतकादी कमज़ोरी का शिकार हो चुके थे। इबादात को रस्म के तौर पर अंजाम दिया जा रहा था, उनमें याद खुदा नहीं थी और बहुत से लोग दीन के जो काम अंजाम दे रहे थे वो अपने आबा व अजदाद की रस्म समझ के अंजाम दे रहे थे, इबादत इलाही के तौर पर नहीं अंजाम दी जा रही थी। इन हालात में ये ख्याल किया जाता था कि शीयत ख़त्म हो चुकी है, हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ख़ुद दरबार खिलाफत से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद नबूवत के बारे में भी शकूक व शुबात पैदा करने लगे थे। एक और बड़ी मुश्किल ये थी कि लोगों की इखलाकी हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। तकरीबन 70-80 और 90-100 हिजरी के दौरान 50-60 सालों में जितने बड़े बड़े गाने बजाने वाले ऐशो इशरत तलब अफराद थे वो मदीने से ताल्लुक़ रखते थे या मक्के से। चुनाचे जब शाम में खलीफा का दिल बेहतरीन गाने बजाने वालों को सुनने का चाहता तो खलीफा के लिए मक्के या मदीने से किसी को लाया जाता, जो कि उस वक्त मशहूर व मारूफ गाने बजाने वालों गुलूकारों के मरकज़ बन चुके थे। बदतरीन नाशाइस्ता तरीन और बेहुदा गोई करने वाले शौरा यानी शायर मक्के और मदीने में मौजूद थे। मरकज़ वही व इल्हाम और ईमान व इस्लाम का सर चश्मा उस वक्त मरकज़ फाहशा व फसाद में तब्दील हो चुका था। आयतुल्ला खामनाई कहते हैं कि मक्के और मदीने के बारे में इन हकायक़ को जानना चाहिए। अफसोस है कि आइम्माए किराम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुतुब में इन तल्ख हकीक़तों के बयान से चश्मपोशी की गई है। फिर वो बयान करते हैं कि मक्के में उमर इब्ने रबिया नामी एक शायर था जिसका शुमार बदतरीन नाशाइस्ता तरीन खिलाफ तहजीब शोरा में होता था और इस जैसे और शायर भी मौजूद थे। हद यह है कि मकामात तवाफ़ रमी जमरा और दीगर मुक़दस मकामात को इन लोगों ने बेहुदा गोई और फिस्को फजूर की शायरी में इस्तेमाल किया। मसलन ये शख्स जो है वो खाने काबा का तवाफ़ और रमी जमरा के दौरान अशार कहता है कि खुदा की कसम रमी जमरा के दौरान मैं उसके मेहंदी लगे हाथों को देख कर इतना हैरान हो गया कि ये भी भूल गया कि मैंने 7 कंकरियाँ मारी हैं या 8। ये इखलाकी पस्ती का हाल था और ये सिर्फ़ एक नमूना है। एक रावी का बयान है कि जिस वक्त उमर इब्ने अबी रबिया मरा तो पूरा मदीना सोगवार था, लोगों के रोने की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, हर तरफ मर्द औरतें जवान बूढ़े सब उसकी मौत पर रंजो गम में नज़र आ रहे थे। रावी कहता है कि मैंने एक कनीज़ को देखा जो किसी काम से जा रही थी, और इस हालत में भी उसकी आंखों से अश्क जारी थे। क्रिया उजारी करती हुई वो कनीज जब कुछ लोगों के पास से गुजरी तो उन लोगों ने कनीज से कहा कि इस कदर क्यों रोती हो? तो कनीज़ ने जवाब दिया कि उमर इब्न रबिया जैसे शख्स से महरूम हो जाने पर। तो किसी ने जवाब दिया कि गम ना करो, मक्के में एक दूसरा शायर खालिद इब्न मखज़ूमी मौजूद है और वो भी उमर इब्न अबी रबिया की तरह शेर कहता है। ये कहकर उस शख्स ने खालिद का एक शेर सुनाया, जिसे सुनकर ये समझ लें कि गोया कनीज़ को सब्र आ गया। उसने अपने आंसुओं को खुश करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि उमर इब्न अबी रबिया ने अपने हरम को खाली नहीं छोड़ा। यानी एक फ़ाहिश को चला गया तो उसकी जगह दूसरा आ गया। ये थी अहलियाने मक्का की अखलाकी हालत। इस तरह की अनगिनत दास्तानें और अहलियाने मक्का और मदीना की शब नशीनी के वाक़यात कुतुब में मौजूद हैं। किसी एक तबके के अफराद इन बुराइयों में मुब्तिला नहीं थे, बल्कि अमीर से लेकर गरीब आम अफराद, हत्ता के कनीज़ों ग़ुलामों से लेकर कुरैश के बड़े अफराद भी इन बुराइयों में गर्क थे। इसके साथ एक और बड़ा मसला, सियासी बदउनवानियाँ भी थीं। ज़्यादातर बड़ी बड़ी शख्सियात ऐसी ख्वाहिशात में गिरफ़्तार हो चुकी थीं जो हुक्मरानों ही के ज़रिए पूरी हो सकती थी, लिहाजा कितने ही लोग हुक्मरानों से वाबस्ता हो गए और दीन पर दुनिया को फ़ौकियत दे दी। एक ज़माने में इमाम की शागिर्दी में रहने वाले मोहम्मद इब्ने शहाब ज़हरी जैसी शख्सियत ने भी ख़ुद को इस पस्ती में गिरा दिया था, यानी दरबार खिलाफत से वाबस्ता हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाली अहादीस मंसूब की। इसके बारे में हम बाद में बयान करेंगे। और उस दौर में मोहम्मद इब्ने शहाब ज़हरी जैसे अफराद की कमी नहीं थी। अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में एक रिवायत नकल की है इमाम से, जिसको पढ़कर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई कह रहे हैं कि इसको पढ़ के इंसानी जहन को सख्त झटका लगता है। पहले तो बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने जनाब जाबिर की ज़बानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया। इमाम फरमाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि लोगों के साथ क्या करें। अगर हम उनके सामने रसूल अल्लाह की कोई हदीस बयान करते हैं तो वो हंसते हैं, और अगर हदीस बयान ना करें तो लोग खामोश नहीं रहते। उसके बाद अल्लाह मजलिसी एक वाक़या बयान करते हैं कि एक मौके पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हदीस बयान करते हैं। मजमे में से एक शख्स उठकर हदीस को झुठलाता है और हदीस कबूल करने से इनकार कर देता है। आयतुल्ला दस्ते गैब शिराज़ी ने किताब ईमान में वाक़या तहरीर किया कि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ लोग आए, जिनमें ज़मरा इब्ने ज़र्रार जैसा बेदीन मुनाफिक भी शामिल था। इमाम फ़िक्रमंद हुए कि अगर हदीस बयान ना करें तो कहेंगे कि इल्म को ज़ाहिर नहीं कर रहा है, और अगर बयान करें तो कहीं मजाक ना उड़ाया जाए। बिलाखिर इमाम ने हदीस बयान की, ज़मरा इब्ने ज़र्रार मजाक उड़ाने लगा और उठ के चला गया। चंद रोज़ गुजरने के बाद अबू हमज़ा सोमाली इमाम से मिलने के लिए घर से निकले। रास्ते में उनके एक दोस्त ने बताया कि ज़मरा हलाक हो गया है। अबू हमज़ा सोमाली कहते हैं कि मैं सूरत हाल का जायज़ा लेने गया तो तदफीन की जा रही थी, मैं जनाजे के करीब खड़ा हुआ और उसके बाद उस शख़्स की कब्र में दाखिल हो गया। वो कहते हैं कि खुदाए वाहिद की कसम, मैंने देखा उसके लब हिल रहे थे, मैं लरज़ उठा, ख़ुद पे काबू ना रख सका, फ़ौरन कब्र से बाहर आया। इमाम की खिदमत में पहुँच कर इमाम से अर्ज़ किया, आका उस रोज़ पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजाक उड़ाने वाला शख्स मर गया, और मैंने ख़ुद अपने कानों से सुना कि वो कह रहा था कि बदबख्त वाए हो तुझ पर, जो कुछ इमाम ने कहा था वो हक़ व सदाक़त पर मबनी था। इब्ने अबिल हदीद ने उस दौर की मशहूर व मारूफ शख्सियात की एक तवील फहरिस्त लिखी है कि वो सब अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनरिफ हो गए थे। और एक रिवायत जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि आपने फरमाया, पूरे मक्के और मदीने में 20 आदमी भी ऐसे नहीं जो हमसे मोहब्बत करते हों। ये वो बदतरीन हालात थे जिनमें इमाम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और इन्हीं इसी ज़माने के हालात की तरफ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इन लफ्ज़ों में इशारा फरमाया है, इर्तद्दन नासा बादल हुसैन इल्ला सलासा, इर्तद्दन नासु बादल हुसैन इल्ला सलासा, यानी हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद तीन अफराद के अलावा सभी मुर्तिद हो गए थे। एक रिवायत में पांच अफराद और बाज़ रिवायतों में सात अफराद के नाम लिए गए हैं। इस दौर में, इन हालात में इमाम अपने अजीम मिशन के लिए जद्दोजहद का आगाज़ करते हैं, और ऐसे सख्त और नासाजगार हालात में ये काम शुरू करते हैं जिसका जारी रखना आम आदमी के लिए तकरीबन नामुमकिन था। अब देखना यह है कि इमाम ने उन हालात में तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया। इसको बयान करने से पहले मुख्तसर सा तारीख़ का जायज़ा लेंगे और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकासिद को बयान करेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के बाद से ही अहले बैत अलैहिस्सलाम सिर्फ इस बात पे तैयार ना थे कि घर बैठकर अहकाम इलाही बयान करते रहें, यानी अहकाम तो उन्होंने बयान करना थे लेकिन गोशा नशीन रहकर सिर्फ अहकाम बयान करते रहें इस पर राज़ी नहीं थे, जैसा कि दुश्मन यही चाहते थे कि अहले बैत को गोशा नशीन कर दिया जाए। सुलह के आगाज़ से ही मासूमीन अलैहिस्सलाम का यही नुक्ताए नज़र था कि अपने तर्ज़ फ़िक्र के मुताबिक एक इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए मुकदमात फराहम करते रहें, यानी वाकयान ऐसी हुकूमत जो इस्लामी तर्ज़ फ़िक्र के मुताबिक हो, क्योंकि इस्लामी हुकूमत तो ज़ाहरा उस वक्त भी मौजूद थी मगर कैसी थी? उस वक्त की माविया की हुकूमत और उससे पहले की और उसके बाद की हुकूमतें जो इस्लाम के नाम पर थीं मगर दर हकीकत वो इस्लामी तर्ज़ फ़िक्र के मुताबिक नहीं थीं। नाम इस्लाम का था, काम शैतानी अंजाम दिए जाते थे। आइम्मा किराम हकीकी इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते थे जिसमें इलाही निज़ाम नाफिज हो। अगर इस हवाले से किसी के जहन में कोई सवालात हैं तो उनका जवाब आइंदा गुफ्तगू में मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके 12 जानशीन हैं जो कि अल्लाह के मुंतखब किए हुए हैं। यही चिराग हिदायत हैं। खिलाफत और हुकूमत को ऐसे ही पाकीज़ा हस्तियों के पास होना चाहिए जिनका मकसद दुनिया से जुल्म व जोर का खात्मा करके अदल व इंसाफ पर मबनी इस्लामी हुकूमत कायम करना है, जैसा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया से जुल्म व सितम का खात्मा करके दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। इन हस्तियों को खिलाफत की हुकूमत की ज़रूरत नहीं बल्कि खिलाफत को इनकी ज़रूरत है। मक्तले मुताहर में शहीद मुर्तज़ा मुताहरी ने लिखा कि मौलाए कायनात के अज़ीम सहाबी जनाब सासा बिन सुहान ने मौलाए कायनात की ज़ाहरी खिलाफत के पहले दिन इमाम की तरफ़ रुक करके कहा था, या अमीर अल मोमिनीन, आपने खिलाफत को जीनत बख्शी है, खिलाफत ने आपको जीनत नहीं बख्शी, खिलाफत आपकी मोहताज है, आप खिलाफत के मोहताज नहीं। और जब मौलाए कायनात की शहादत हुई तो जनाब सासा बिन सुहान ने कहा था कि खुदा की कसम अगर लोग आपके बताए हुए रास्ते पर चलते तो यकीनन उन पर आसमान से रहमतें नाजिल होती और उनके कदमों के नीचे से नेमतों के चश्मे जारी होते, मादी और मानवी नेमतों तक उनको रसाई नसीब होती, मगर अफसोस के लोगों ने आपकी कदर ना पहचानी। अगर लोग अहले बैत का हक़ पहचानते, हक़ अदा करते तो क्या होता? और जब लोगों ने उनका हक़ गसब कर लिया और उनको उनके मकाम से हटा दिया, वो मकाम के जो अल्लाह की तरफ से उनको अता किया गया, तो फिर क्या हुआ? इसका जवाब हज़रत फ़ातमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एक खुतबे में मौजूद है। चंद जुमले शहज़ादी के फरमाती हैं, कसम बाखुदा अगर लोग राह रास्ते मुनहरिफ हो जाते, अल्लाह की वाज़े हुज्जत को कबूल करने से मुंह मोड़ लेते तो अबल हसन यानी मौलाए कायनात फिर से उन्हें राह हक़ पर ले आते, खलवत और जलवत में नसीहतें फरमाते, बैतुल माल की दौलत से अपने लिए कोई इस्तफादा नहीं करते, सिर्फ़ इस फिक्र में रहते कि किसी प्यासे की प्यास बुझा दें, किसी भूखे का पेट भर दें। फिर शहज़ादी ने सूरह आराफ की आयत की तिलावत की, अगर इन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो हम आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देते, लेकिन उन्होंने तकजीब की यानी झुटलाया तो हमने उनके अमाल के सबब उन्हें गिरफ्त में ले लिया। गोया शहज़ादी इस आयत को बयान करके इस बात की पेशेंगोई फरमा रही हैं कि अबल हसन को खिलाफत से महरूम करने से उम्मत मुस्लिमा आइंदा हलाकत कुन फसादात से दोचार होगी। और वाकयान अगर तमाम उमूर मौलाए कायनात और उनकी औलाद में से आइम्मा के हाथ में होते तो खुदा ज़मीन व आसमान की बरकतों के दरवाज़े खोल देता, लेकिन जब इस इलाही मनसब को इसके अहल से दूर कर दिया गया तो रोना उम्मत का बल्कि दुनिया का मुकद्दर बन जाता है। दुनिया ने देख लिया कि अब तक कौन सा जुल्म है जो इंसानों पर नहीं किया गया। बात हो रही है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उन हालात में जो अहम उमूर अंजाम दिए उनको बयान करने से पहले तारीख़ का मुख्तसर सा जायज़ा लेते हुए ये बयान हो रहा है कि सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद से अहले बैत का नुक्ता नज़र ये था कि इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए ज़मीन हमवार की जाए। इमाम ने सुलह के बाद 10 साल ज़िंदगी के दौरान कुछ लोगों को करीब किया, उनकी तरबियत की। उनमें से कुछ अफराद ममलिकत के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने कौल व फेल के ज़रिए माविया की हुकूमत की मुखालफत करते रहे, और इसी जुर्म में उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी शहादत हुई, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इसी रविश पे चलते रहे, यहाँ तक कि माविया का इंतकाल हो गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। करबला का दिलखराश वाक़िया रोनुमा हुआ। अगर लोगों ने हज़रत सैयदुश्शुहदा का साथ दिया होता तो यजीदी लश्कर शिकस्त खाता और सैयदुश्शुहदा इस्लामी यानी इलाही निज़ाम हुकूमत कायम करते। अगरचे कि करबला के वाक़े से इस्लाम के मुस्तकबिल के लिए नहायत मुफीद नतायज बरामद हुए, लेकिन वो मकसद जिसके लिए हज़रत हसनैन अलैहिस्सलाम कोशिशें कर रहे थे यानी इस्लामी हुकूमत का क़याम, वो ताख़ीर का शिकार हो गया। हज़रत हसनैन के करीबी साथी शहीद कर दिए गए थे, दुश्मन को मुसल्लत होने का मौका मिल गया था, इस हादसे ने लोगों को खौफज़दा कर दिया था। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम हमेशा इस्लामी हुकूमत की तशकील की कोशिशें करते रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियों का आगाज़ हुआ, और हुकूमत इस्लामी की तशकील के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ हज़रत हसनैन अलैहिस्सलाम पर थीं, अब वो ज़िम्मेदारियाँ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर आ गईं, और उनके बाद दूसरे इमामों को ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम भी उन्हीं मकासद के हुसूल के लिए कोशिशें करते रहे जिनके लिए हज़रत हसनैन अलैहिस्सलाम कोशां रहे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इलाही हुकूमत कायम करने को अपना मुकद्दस मकसद समझते थे, और इस राह में तमाम तर कोशिशों को बरूए कार लाते रहे। इमाम की जद्दोजहद से इस्लामी माशरा परेशान हाली इंतशार से निजात पा गया। इमाम और दीगर तमाम आइम्मा का मकसद इस्लामी निज़ाम कायम करना ही रहा, मगर सवाल ये है कि उन हालात में इस्लामी हुकूमत कैसे कायम हो सकती थी। इसके लिए चंद बातें ज़रूरी थीं, और वो ये थीं। नंबर एक, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम लोगों को मारिफ इस्लामी यानी उलूम व फ़नून इस्लामी की तालीम दें। जिस माशरे में लोग इस्लाम से दूर हैं वहाँ कैसे इस्लामी हुकूमत कायम की जा सकती है? इस्लामी माशरा बनाने के लिए, कायम करने के लिए ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर तैयार करना ज़रूरी है। इसके लिए आवाम को दीनी तालीमात से आशना किया जाए, सही इस्लामी फ़िक्र की तबलीग की जाए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को लोगों के दीन की इस्लाह करना थी, उनको इस्लामी इखलाक से आरास्ता करना था और बुराइयों के गढ़े से निकालना था। अभी जो उस ज़माने के हालात बयान किए उनमें एक मसला यही तो था कि लोग ईमान एतक़ाद के लिहाज से मुफलिस हो चुके थे, इखलाकी पस्ती में मुब्तिला थे। तो इमाम के इकदामात में दीन की इस्लाह और मारिफ इस्लामी की तालीम देना शामिल था, इसके साथ साथ ही लोगों को इखलाकी पस्ती से निकाल कर इखलाक इस्लामी से आरास्ता करना था, इस्लाम के बताए हुए इखलाक से आरास्ता करना था। दूसरा काम यह था कि शियाने आले मोहम्मद को जमा करके एक तंजीम तश्कील दी जाए। इसका मतलब आज तरह की आजकल की जो तंजीम पार्टी है इसका मतलब वो नहीं है। इमाम सालेह मोमिनीन का गिरोह तैयार करना चाहते थे, उनकी तरबियत करना थी जो मुस्तकबिल में जिम्मेदारियाँ उठा सके। ऐसा बिखरा हुआ माशरा कि जहाँ अफरा तफरी की सूरत हाल थी, ऐसे में इमाम किस तरह अकेले या सिर्फ चंद गैर मुनज्जम अफराद के साथ काम कर सकते थे, लिहाजा ज़रूरी था कि शियों को मुनज्जम करें। तीसरा अहम काम, मसला इमामत की हकीकत लोगों को समझाई जाए। अहम तरीन मकसद ये था कि अहले बैत की हक्कानियत लोगों के सामने वाज़े की जाए, उन्हें बताया जाए कि विलायत तो इमामत, हुकूमत और खिलाफत इमाम का हक़ होता है, हकीकी जानशीन रसूल इमाम है, और लोगों को बताएं कि मैं इमाम वक्त हूँ। ये भी बताया जाए कि इमाम कौन हो सकता है, इमाम के लिए क्या शराइत हैं। और क्योंकि हर दौर में एक हाकिम मौजूद रहा, इस्लामी माशरे की क़यादत उसके हाथ में होती थी, लोग उसे इमाम समझते थे, लिहाजा ये इतना आसान नहीं था कि इमाम आसानी से लोगों के सामने कह देते कि मैं इमाम हूँ। दसियों साल से पैगंबर इस्लाम के अहले बैत के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगंडे किए गए, इससे आलम इस्लाम मुतासिर था, पैगंबर से जाली हदीसों को मंसूब किया गया था, हत्ता के बाज़ हदीसों में तो अहले बैत अलैहिस्सलाम को ही नाऊज़ु बिल्लाह सुब व शुतम का हकदार करार दिया गया था, और ये अहदीस आवाम के दरमियान नशर हो चुकी थी। लोगों को अहले बैत की सही मार्फत उनके मर्तबे का इल्म ना था, और शाम में बनी उमैया ख़ुद को ही अहले बैत बताते थे कि हम ही अहले बैत हैं। ऐसे हालात में अहले बैत के हाथों اسلامی حکومت کیسے ممکن تھی؟ اسی لیے امام کا اہم ترین مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان اہل بیت کی حقانیت کو واضح کریں، لیکن امام کو اس بات کی جلدی نہیں تھی کہ اسلامی حکومت خود آپ کے زمانے میں ہی بن جائے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ لمبی مدت کا کام ہے، آپ کے زمانے میں نہیں ہو سکے گا۔ امام مستقبل کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے، اور آئمہ میں سے کوئی بھی اپنے زمانے میں ہی اسلامی حکومت تشکیل دینے کی فکر میں نہیں تھے، وہ کام کر رہے تھے، کوششیں انجام دے رہے تھے، لیکن ان کی نظریں کچھ مدت کے بعد ظاہر ہونے والے نتائج پر تھیں۔ ان کے زمانے میں بن جائے اچھی بات ہے، نہیں بن پاتی تو بہرحال ان کی نظریں آئندہ زمانے پر تھیں کہ اس میں جو نتائج ظاہر ہوں گے۔ کچھ کاموں میں وقت لگتا ہے، ان کے لیے زمین ہموار کرنا پڑتی ہے، جلد بازی سے کام نہیں چلتا۔ مثلا ایک مثال دیں کہ اگر آپ بچے کو گاڑی چلانے کے لیے دیں تو پہلے یقیناً اس کو ڈرائیونگ سکھائیں گے۔ کون بے وقوف ہے جو بغیر ڈرائیونگ سکھائے بچے کے ہاتھ میں گاڑی دے دے؟ تو مثلاً انسانی حقوق کے نام پر بننے والی تنظیمیں یا مذہبی تنظیمیں جو اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتی ہیں، انہیں پہلے، ان میں جو کارکن ہیں، کام کرنے والے ہیں، انہیں پہلے سیکھنے کی، تربیت کی ضرورت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا رسالت الحقوق پڑھا جائے، جس کے بارے میں ہم بعد میں بیان کریں گے، اور صرف پڑھ لینا کافی نہیں، اپنے عمل میں لایا جائے اور پھر معاشرے میں کام شروع کیا جائے۔ بغیر تربیت کے کوئی معاشرے میں گروہ کام کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بغیر علم کے عمل کرے وہ اصلاح کرنے سے زیادہ تباہی مچاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو خیر ہم نے ایک مثال دے دی ہے، آج کل کے زمانے کے حساب سے کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام کو اپنا مشن آگے بڑھانے کے لیے بنیادی نوعیت کے تین اہم امور انجام دینے تھے۔ پہلا، قرآن و سنت کے مطابق صحیح اسلامی افکار و نظریات کی تبلیغ کرنا تھی۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانی تھیں۔ اسلامی تعلیمات ایک مدت سے یا تو تحریف کا شکار ہو گئی تھی، ان میں تحریف کر دی گئی تھی یا بھلا دی گئی تھی۔ دوسرا کام، اہل بیت کی حقانیت ثابت کرنا اور خلافت اور امامت پر ان کے حق کو ثابت کرنا تھا۔ تیسرا، شیعان آل محمد کو جمع کر کے تنظیم تشکیل دینا، ان کو منظم کرنا، اگرچہ ان کے علاوہ اور بہت امور انجام دینا تھے، لیکن ان تین کاموں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور ان کے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلامی حکومت کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے، اسلامی حکومت، نظام اسلامی کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے۔ امام نے یہ کام کیسے انجام دیے؟ معاشرے کی حالت مختصراً بیان کر دیے کہ وہ معاشرہ کتنا پستی کا شکار تھا، کتنی بری صورت حال تھی، اور اہم بات یہ کہ امام ممبر پہ جا کے آزادی سے تبلیغ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف تو حکومت اس کام میں رکاوٹ بن رہی تھی، دوسرے یہ کہ لوگوں کی اپنی حالت ایسی تھی کہ وہ خود بھی سننے پہ تیار نہ تھے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کرا کہ حدیث بیان کریں تو قبول نہیں کر رہا ہے، اور جو سب حالات آپ سن رہی ہیں جو بیان کیے گئے۔ لہٰذا امام نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ تھا، امام نے دعا اور وعظ و نصیحت کے ذریعے تبلیغ کی۔ دعا کا تعلق صحیفہ سجادیہ سے ہے، اور صحیفہ سجادیہ کے علاوہ بھی امام کی دعاؤں کے مجموعے ہیں۔ وعظ و نصیحت کا تعلق ان اقوال اور روایات سے ہے جو امام سے نقل ہوئی ہیں، اور امام کے زیادہ تر ارشادات نصیحت کے انداز میں ہیں، اور ان پر غور کرنے سے سمجھ آئے گا کہ امام نے کتنا حکیمانہ اور مدبرانہ طریقہ منتخب کیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو باتیں، نظریات، اعتقادات آپ لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ یہ افکار و نظریات کی تبلیغ کا بہترین طریقہ ہے، اور امام کے زیادہ تر فرامین زہد و تقویٰ اور اسلامی معارف یعنی اسلامی علوم پر مشتمل ہے، اور معارف بھی دعا ہی کی شکل میں بیان کیے۔ ایک بار پھر خلاصہ کر دیں کہ امام نے تین بنیادی کام انجام دینے ہیں، اور طریقہ کار یہ ہے کہ امام تبلیغ کے ذریعے ان کاموں کو انجام دیں گے۔ تبلیغ کے لیے ممبر پہ نہیں جا سکتے، لہٰذا دعا اور وعظ و نصیحت کے ذریعے کام انجام دیں گے۔ کہیں تو امام اللہ سے دعا کے ذریعے اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے، کہیں نصیحت فرمائیں گے، نصیحت کے ذریعے اہل بیت کی حقانیت ثابت کریں گے، حکومت و خلافت پر اہل بیت کے حق کو ثابت کریں گے، امام کی پہچان کروائیں گے، اور اپنے ارشادات کے ذریعے شیعوں کو منظم کریں گے۔ مثال کے طور پر اب اس روایت کو سنیے، پورا خطاب وعظ و نصیحت کے لہجے میں ہے۔ امام فرماتے ہیں، ایہا الناس اتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ راجعون، یعنی امام فرما رہے ہیں اے لوگوں، تقوی الہی اختیار کرو اور یاد رکھو آخر خدا کے سامنے جانا ہے۔ اس کے بعد عقائد اسلامی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا فرض ہے اسلام کو صحیح طور پہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اسلام کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکے۔ گویا اس بیان کے ذریعے لوگوں کے اندر اسلام کی صحیح شناخت کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اس وقت سے ڈرو جب لوگ تم کو تنہا قبر کے حوالے کر دیں گے اور منکر و نکیر تمہارے پاس آئیں گے، اور پہلی چیز جس کے بارے میں تم سے سوال کریں گے تمہارے خدا کے متعلق ہوگی جس کی تم بندگی کرتے ہو۔ یعنی سننے والوں کے ذہن میں توحید کا مفہوم اتار کر معرفت خدا کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا، وَعَن نَبِيِّكَ الَّذِي اُرْسِلَ إِلَيْكَ، اور اس نبی کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ گویا مسئلہ نبوت کی معرفت پہچان کا جذبہ زندہ کر رہے ہیں۔ وَعَن دِينِكَ الَّذِي كُنْتَ تَدِينُ بِهِ، اور اس دین کے بارے میں پوچھیں گے جس کی تم نے پیروی کی۔ وَعَن كِتَابِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتْلُو، اور اس کتاب کے بارے میں پوچھیں گے جس کی تم تلاوت کرتے ہو۔ اور پھر مذہب اسلام کے انہی بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت، قرآن اور دین کے ساتھ اہم نقطے کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ وَعَن اِمَامِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتَوَلَّى، اور اس امام کے بارے میں سوال ہوگا جس کی ولایت کا تم دم بھرتے رہے ہو۔ یہاں امام مسئلہ امامت کو واضح کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں قبر میں تم سے امامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ فیصلہ کر لو جب نکیرین سوال کریں گے کہ تم نے جس کو اپنا امام مان رکھا تھا، اپنا امام مان لیا تھا، کیا وہ واقعی امام تھا؟ جو شخص تم پر حکومت کر رہا تھا، معاشرے کی رہبری تم نے جس کے ہاتھ میں دے رکھی تھی، کیا وہ حقیقت میں امام ہونے کے لائق تھا؟ کیا یہ وہی امام تھا جس کی امامت پر خدا راضی تھا؟ اس کا کیا جواب دو گے؟ امام بالکل غیر محسوس طور پر اس مسئلے کی نزاکت کا احساس دلا کر لوگوں کو بیدار کر رہے تھے۔ امام نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میں ہی وہ امام ہوں جسے اس مقام پر ہونا چاہیے جس پر یہ غاصب بیٹھا ہے۔ مگر جیسا کہ کہا گیا کہ ابھی بیان کرا کہ یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ شخص جو خلیفہ کے عنوان سے اقتدار پر قابض تھا، حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ آئمہ کے ہاں مسئلہ امامت حکومت سے الگ نہیں ہے۔ یہاں امام اسی امام کے بارے میں، یعنی امام سجاد علیہ السلام، اسی امام کے بارے میں سوال کی بات کر رہے ہیں جسے دینی اور دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے امور زندگی کا نگران ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، یعنی پیغمبر اسلام کا جانشین۔ امام جن کی اطاعت دینی امور میں بھی واجب ہے اور دنیاوی امور میں بھی، لیکن صدیوں سے یہ مسئلہ غلط فہمی کا شکار رہا۔ لوگ خیال کرنے لگے کہ ایک شخص وہ ہے جو معاشرے پہ حکومت کرتا ہے، زندگی سے متعلق امور مثلا حکومت کی تشکیل وغیرہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہی ہمارے اچھے برے کا مالک اور ذمہ دار ہے، اس کو حاکم کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور شخص بھی ہے جس کا کام لوگوں کا دین درست کرانا ہے، مثلا وہ نماز ٹھیک کرا دے، قرآن ٹھیک کرا دے، قرآن کی عقائد ٹھیک کرا دے، اسی طرح سے وہ اور دینی امور اپنی صلاحیت اور ہمت کے مطابق انجام دے دے، اس کا نام عالم رکھ دیا گیا۔ اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کی موجودگی میں لوگ امام کی حیثیت وہی سمجھنے لگے جو غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ایک عالم دین کی ہے۔ ظاہر ہے یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ 12 امام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں، یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں۔ صدر اسلام میں امام اسلامی معاشرے کا قائد، دین و دنیا کا حاکم سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا آپ کو علم ہے کہ تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں تھے۔ امام پیشوا اور ہادی کو کہتے ہیں۔ دینی اور دنیاوی امور دونوں میں جس کی اطاعت واجب ہے اسے امام کہتے ہیں۔